सूते अजस्रम शुक्ल कृष्ण लोहिता सर्वदा प्रजा। ये प्रजा तीन प्रकार का कर्म करती है, सात्विक कर्म करती है और तामसी कर्म करती है, रजो गुण से युक्त कर्म करती है। कुछ पाप करती है, कुछ पुण्य करती है और कुछ पाप पुण्य मिलवा करती है, ऐसे आपकी प्रजाएं हैं। इसलिए आप गृहस्थी हैं कि इन प्रजाओं को तत्त कर्म के अनुसार तत्त फल प्रदान करते हैं। तो ये आपका संसार है ना, ये गृहस्थ है, गृहस्थ। मैं तो महाराज क्या बताऊं, श्री राम मैं सब जग जानी, मैंने तो सारा संसार सीताराम मैं देखा है। सीताराम मैं देखो, सीताराम मैं बोलते तो है, श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पर ये सीताराम मैं जगत क्या है, कोई इसका अर्थ, इसका अर्थ प्राय लोगों को पता नहीं है। हमारे नारद जी बोलते हैं, नारद जी कहते हैं कि संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ मिलेंगे, या तो कोई पुल्लिंग पदार्थ या स्त्रीलिंग पदार्थ। कहेंगे भाई हमारी घड़ी लेके आओ, ये घड़ी लेकर के आओ, तो घड़ी स्त्रीलिंग है। अच्छा भाई हमारा चश्मा लेकर के आओ, चश्मा पुल्लिंग है, तो चश्मा लेकर के आओ और घड़ी लेकर के आओ। मेरा चश्मा तो टूट गया, मेरी घड़ी फूट गई। तो ये जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बोलते हैं, ये दो ही वाक्य संसार में बोल सकेंगे आप, या तो पुल्लिंग बोलेंगे या स्त्रीलिंग बोलेंगे, दूसरा कोई आप बोल नहीं सकते। तो जो स्त्रीलिंग वाक्य होता है वो सीता है, और जो पुल्लिंग वाचक शब्द होते हैं वो सब राम है। इसलिए सी राममय सब जग जानी, सीता राममय। ये मकान बड़ा अच्छा है, मकान बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और गैलरी देखो, गैलरी रखी हुई है। अब गैलरी तो है सीता और मकान हो गया ये जो है राम। किवाड़ बहुत अच्छा है, बारी है ना, ये बारी, बारी बहुत अच्छी है। तो बारी हो गई सीता और किवाड़ हो गया राम। तो लोके स्त्रीवाचकम यावत, इस संसार में जो स्त्रीवाचक शब्द है वो तो है सीता, और पुन नाम वाचकम यत्तत, और जो पुल्लिंग नाम के शब्द हैं वो सब हे राम जी आप हो। इसलिए सी राम मैं सब जग जाने, जितने पुरुष हैं सब विष्णु का रूप है, जितनी स्त्रियां हैं सब लक्ष्मी का रूप है, जितने पुरुष हैं सब शिव रूप है, जितनी स्त्रियां हैं सब पार्वती रूप है। ब्रह्मा त्वम जानकी वाणी, ब्रह्मा जी हैं वो तो आप हो, और वाणी है वो है जो है वो सीता जी है। सूर्यस्त्वम, सूर्य है वो आप हो, और सूर्य की जो जो है प्रभा है, कांति है, सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य की किरण है वो सीता है। ऐसी चंद्रमा है वो आप है, चांदनी है वो सीता जी है। शक्र आप और पौलोमी सीता है। अग्नि आप और अग्नि की लौ होती है वो सीता जी है। ऐसे ऐसे राम त्वमेव वरुण है, वरुण आप और भार्गवी सीता है। हे राम कुबेर आप हो तो संपत्ति है वो सीता है। संपत्ति कुबेर है, उसकी पत्नी संपत्ति। तो यतस्मात लोकत्रय देव युवाभ्याम नास्ति किंचन, इसलिए आप दोनों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, सब आप ही आप हो। कहते सब मैं ही मैं हूं, तो फिर लोगों को ये भ्रांति ज्ञान क्यों हो रहा है कि ये मैं हूं, ये तू है, ये वो है, ये वो है। ऐसे भ्रांति ज्ञान क्यों हो रहा है? कि ये भ्रांति ज्ञान होता है अपने त्रिविध शरीरों से जो है संबंध करने पर। ये शरीर है ना, इसमें दो शरीर और है, स्थूल शरीर तो है ही, पांच भूतों से बना हुआ, इसके साथ साथ में सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है कारण शरीर। ये आत्मा अपने को उपहित मान लेता है, इनकी उपाधियों से अपने को घिरा हुआ मानता है, है नहीं, मान लेता है। इसको शास्त्र में और ही ढंग से बताया हो। वो ऐसे बताया कि एक सिंहनी ने बच्चे को जन्म दिया, तो सिंहनी के सिंह बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा सिंह बच्चा, और बच्चा होते ही सिंहनी मर गई। कहते हैं सिंहनी के एक ही बच्चा होता एक बार ही, सिंहनी एक बार जीवन में एक बार ही सिंह का संग करती है, दोबारा संग नहीं करती। तो वो सिंहनी ने एक बच्चा दिया, बच्चा देती वो मर गई। अब मरने के बाद वो बच्चा ही रह गया है, तो वो बच्चा क्या हुआ, उस जंगल के अंदर एक कोई गधा मरा हुआ था और बरसों से मरा हुआ था, तो अंदर से सब सूख गया कि वो खालड़ा था, तो वो क्या गया उस खाल के अंदर चला गया सिंह का बच्चा। अब खाल के अंदर चला गया, अब वो सिंह यूं यूं चलने लगे तो वो खालड़ा भी चले। खालड़ा चलते 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 उधर से खूब गधों का टोड़ा आया है। उन गधों के टोड़ों ने देखा कि भाई ये तो कोई हमारे में से ही होगा, कि अरे अपने में से नहीं है, सिंह का बच्चा है, इसको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। अच्छा, तब जो है उन गधों ने कहा कि भाई देखो तुम तो हमारे ही कुल के हो। कि अच्छा साहब तुम्हारे ही कुल का हूं। अब उसने कभी सिंह देखा नहीं, बच्चे ने क्या देखा, मां तो मर गई, देखा ही नहीं कुछ ने। तो वो गधों के साथ ही रहे, गधों के साथ रहते 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 थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो वो खाल उसके अंदर वैसी, अब वो खाल गधा थोड़ा बड़ा था, करे थोड़े दिनों में वो सिंह का बच्चा बड़ा हुआ और गधों के साथ रहे, अपने को गधा ही माने जैसे हो रहे बस, ठीक। किसी को डरावे नहीं, धमकावे नहीं, खाए कुछ पता नहीं। अब उस वन के अंदर, उस जंगल के अंदर एक सचमुच में एक सिंह और आ गया, और वो आकर जोर से दहाड़ मारने लगा। दहाड़ मारा तो जितने गधे थे सब भग गए, वो एक रह गया, वो खालड़ी पहना हुआ, वो भी दहाड़ आयु। वो दहाड़ा तो उस सिंह पर असर पड़ा कि भाई ये गधा होकर के मेरे बराबर दहाड़ता है, कौन है ये। तो वो चिल्लाया कि जानते हो नहीं, मैं सिंह हूं, मैं पशुराज हूं, तुम मेरे बराबर आवाज कैसे निकालते हो। उसने कहा कि नहीं, तुम हमारे सामने गर्जना करने की हिम्मत करते हो, इसलिए मैं भी गर्जना करता हूं, तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा कि आ जाओ। अब वो बच्चा जवान था और वो था बुढ़ा। पास में आए तो उस खाल के अंदर से ही वो सिंह झांकता है, वो बाहर से आया हुआ, खाल के अंदर देखता है, क्या बात है भाई, इसके अंदर कुछ आवाज मुख कुछ हो रहा है, इसकी मूछें भी ऐसी है और ये आंख भी वैसी नहीं है। अरे तू कौन है रे, कि मैं गधा हूं। गधा तो कैसे है, तेरी आवाज गधे जैसी नहीं है, तेरी आवाज तो सिंह जैसी है। कहना ही मैं गधा हूं। अरे तू अच्छी तरह से देख, क्या बात है, उसने जो पंजा यूं लगाया तो उसने भी अपना पंजा लगा दिया यूं। अब दोनों ने पंजा लगाया, उसने भी ताकत लगाई, उसने भी ताकत लगाई तो अरे तू गधा नहीं है, तू सिंह है। तो वो चारों तरफ घूम घाम के यूं देखता है कि खाल तो गधे की है, गधा ऐसा होता नहीं है। ऐसे करते उसने पंजे से उसकी खाल यूं खींची खींची तो उसका दूसरी, अब वो तो बनावटी खाल थी, असली खाल थी। अरे देख, तेरा मेरा एक जैसा रंग है, तेरे मेरे एक जैसे पंजे हैं, देख तेरे मेरे एक जैसे दांत हैं। अच्छा, मैं गधा नहीं, मैं सिंह हूं। हां मैं सिंह हूं। ओ हो, इसका अर्थ क्या हुआ। ऐसे ही सज्जनों, हम वास्तव में अपने को मानते क्या है कि मैं शरीर हूं। भगवान कहते हैं कि अरे भाई तुम मेरे हो, मेरे जैसा मैं हूं वैसे तुम हो, तुम्हारी और हमारी एकता है। जैसे सिंह ने कहा ना, तुम्हारी हमारी खाल मिलती है, आवाज मिलती है, पंजे मिलते हैं और पैर के पंजे मिलते हैं, चाल मिलती है, ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि भाई मैं नित्य हूं, तुम भी नित्य हो, मैं आनंद रूप हूं, तुम भी आनंद रूप हो, तुमने कहां ये शरीरों की खाल पहन ली। नारद जी कहते हैं कि प्रभु ये जीव कभी तो पांच भूतों वाली खाल पहनता है तो कहता है शरीर मैं हूं, कभी मन बुद्धि इंद्रियों के साथ मिलकर के कहता है कि मैं मन वाला हूं, मैं बुद्धि वाला हूं, इनका अहंकार करता है। अहंकारश्च बुद्धिश्च पंच प्राणेन्द्रियाणी च, तो ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या होता है कि स्थूलम सूक्ष्मम कारणाख्यम, कारण शरीर होता है कि जिसमें हमारा स्वभाव रहता है। स्वभाव देखो, हर आदमी की चाल आपको एक जैसी नहीं मिलेगी, हर आदमी के हर आदमी का व्यवहार एक जैसा नहीं मिलेगा, हर आदमी का हर काम करने का तरीका एक जैसा नहीं मिलेगा, देखने का तरीका अलग, सोचने समझने का तरीका अलग, बोलने का तरीका अलग, हर आदमी में अलग अलग होता है। तो ये जो आदमी का जो स्वभाव है, जिसके अंदर वो राग द्वेष करता है, जिस कारण से मनुष्य अज्ञान करता है, ये उसका कारण शरीर है। कारण शरीर जिसमें कर्मों का फल इकट्ठा होता है, कर्म के संस्कार इकट्ठे होते हैं, इसको कारण शरीर बोलते हैं। वो इनके साथ ये प्राणी चिपक जाता है, इस कारण से ये सब कुछ भूल जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्याख्या संस्कृति या प्रवर्तते तासाम विलक्षण साक्षी चिन्मात्र स्वम रघुत्तम। ये जीव जब आपके स्वभाव को समझता है कि जैसे भगवान इस संसार से बिल्कुल निरपेक्ष है, ऐसे ही मैं स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से बिल्कुल अलग हूं, और जैसे मैं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों को जानने वाला हूं, ऐसे ही भगवान भी जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत के प्रलय को जानने वाले हैं भगवान। ओहो, भगवान जानने वाले, जैसे मैं जागृति को जानता हूं, स्वप्न को जानता हूं, गहरी नींद को जानता हूं, तो मेरी और भगवान की तो समानता है। ऐसा जो समझता है वो वास्तव में आपके तत्व को समझ सकता है। तत्तेव जगत जातम, ये संसार तो आपसे पैदा हुआ है और आपके अंदर प्रतिष्ठित है, आपसे पैदा होकर आप ही का आधार इसको मिला हुआ है और अंत में ये आप ही में ही लीन होने वाला है। देखो, घड़ा किससे पैदा होता है? मिट्टी में, मिट्टी से पैदा होता है। और घड़ा फूट जाएगा तो लोग घड़ा कहेंगे क्या? उसको घड़ा नहीं कहेंगे, घड़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि अब तो ठीकरी कहेंगे, ठीकरी है, घड़ा नहीं रहा, वो मिट्टी की वो आकृति नहीं रही। तो वो मिट्टी तो है, घड़ा मिट्टी को छोड़ करके है क्या? मिट्टी को तो हम जानते नहीं, हम घड़े को तो जानते पर मिट्टी को नहीं जानते। बच्चा कहे कि मां मिट्टी कहां है, ये है ना, ये तो घड़ा है, मिट्टी कहां है? उस घड़े से अतिरिक्त मिट्टी थोड़ी ही होती है, वो घड़ा है ना, वो घड़े में ही मिट्टी। मां से बच्चा पूछता है कि मां इस घड़े के अंदर मिट्टी बताओ, घड़ा तो है ये, इसमें मिट्टी कहां है? अरे ये मिट्टी है, घड़ा है ही नहीं, घड़ा तो नाम है। जैसे घड़ा और मिट्टी इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही प्रभु संसार को और आपको अलग अलग नहीं कर सकते, आप ही तो हो वो। रज्जौ अहिम इव आत्मानम, जैसे डोरी को हमने सांप समझ लिया और भय पैदा हो गया, अरे सांप है, सांप है, सांप। बिल्कुल सच्ची घटना है वो, अंधेरे में एक आदमी जोर से चिल्लाया, सांप है, सांप है, सांप। लोग इकट्ठे हो गए, देखा लाइट की, अरे डोरी, कह रहे भाई मैंने तो सांप समझ लिया, इसलिए मैंने आप लोगों को जगा दिया। एकदम सत्य घटना है, जाके देखो वहां डोरी है। तो जैसे डोरी को सांप समझ करके और आदमी घबराता है, ऐसे ही भगवान को, आपको ये संसार समझता है, ये प्राणी आपको तो समझ आई संसार ऐसा ओए साहब बड़ा भारी संसार बहुत विचित्र है संसार बड़ा ऐसा है ऐसा मान मान करके वो भयम भवेत इसको भय होता है और परात और जो विचार करे कि अरे नहीं ये तो परमात्मा है संसार रहेगा ये भगवान है। लोग क्या करते हैं भगवान नाम सुनते ही अच्छी अच्छी चीजों पर विचार करते हैं यदि ये सब में भगवान है तो बुराई क्यों होती है जी सब यदि भगवान है तो ये हिंसा क्यों करता है आदमी इसमें भगवान है तो अरे हिंसा करने वाली अलग चीज है कि सब में भगवान है ना तो सब में भगवान है ये बात तो हमारी दृष्टि होनी चाहिए दृष्टि हमारी दृष्टि जाती है उसके स्वभाव पर उसके कारनामों पर कारनामे है स्वभाव है ये अलग अलग है लेकिन भगवान तो है ही ना भगवान को छोड़ करके क्या है देखो कितना ही मकान आप कलकत्ते में लाखों मकान देखते हो सब में ईंट है पत्थर है कंक्रीट है लोहा है और सीमेंट है इसके अलावा क्या है इसके अलावा क्या है ये कितना ही बढ़िया मकान है लेकिन एक जैसे मकान नहीं है सबकी आकृतियां अलग अलग है अब इसमें लोहा है किरीट है और जो है सीमेंट है यही चीजें हैं और क्या है इसमें ईंट है सीमेंट है यही चीजें होती है। इसी प्रकार से संसार में भगवान भगवान के अलावा आपके अलावा कुछ दूसरी चीज है ही नहीं दूसरी चीज का ना इसका स्वभाव खराब है इसका आचरण खराब है ये हमारी ऊपर से बनाई हुई कल्पित दृष्टि है सब आप है। हम व्यावहारिक जगत को महत्व ज्यादा देते हैं हम प्रातिभासिक सत्ता को महत्ता ज्यादा देते हैं इसलिए वास्तविक बात को हम भूल जाते हैं वास्तविक बात को भूलने से ही आप में अलग 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 दिखता है। इसलिए अज्ञानात् नश्यते सर्वम त्वयि रज्जौ भुजंगवत जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो जैसे रज्जु के अंदर सर्प बुद्धि नहीं रहती ऐसे ही जब भगवत बुद्धि हो जाती है तो संसार में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ है इस बात को नित्य निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तस्मात् ज्ञानम सदाभ्यसेत अभ्यास का अर्थ केवल रटना नहीं है ये अभ्यास का मतलब है कि बार बार उधर विचार करना चाहिए कि है सब भगवान ही। सेठ जी कहा करते थे कि जो कुछ हम देखते हैं वो भगवान है जो हो रहा है वो लीला है दो ही चीज हमारे सामने आती है या तो है वो चीज सामने आती है और या क्रिया सामने आती है करना और होना तो जो है वो भगवान और जो हो रहा है वो लीला बस हो रहा है वो लीला हो रही है और जो है वो भगवान है घाटा है तो भगवान है ये घाटा है तो भगवान है मुनाफा है तो भगवान है ये भगवान है और ये सब कुछ हो रहा है ये लीला है उनकी ये कलयुग भगवान की लीला हो रही है किसी आदमी के आचरण क्रिया वगैरह देखो देखो ये भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं कलयुग में तो ऐसा ही होगा कल विरोध चहु हो रहा चारों तरफ विरोध हाय वो अच्छा है वो बुरा है बस जिंदाबाद और मुर्दाबाद ये सब जो है ये क्या है ये भगवान की लीला कलयुग भगवान की लीला है। एक संत थे वो कोई मिले तो वो ऐसे बोलते थे कि भाई आज तो कलयुगी भगवान के दर्शन हुए कि क्यों क्या हुआ अरे आज तो कलयुगी भगवान ने ऐसी सी लीला की ऐसा किया हमारा कपड़ा कहीं फेंक दिया हमसे लड़ाई झगड़ा करने लग गया धक्का मुक्की देने लग गया वो कलयुगी भगवान आ गया आज ये दृष्टि होती है। इसलिए कहा सदा अभ्यसेत इस बात का सदा अभ्यास करना चाहिए अर्थात ऐसी दृष्टि बने ऐसी बात करनी चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े भक्तजन होते हैं वो आपके आपकी इसी दृष्टि के लिए आपकी भक्ति करते रहते हैं आपका भजन करते रहते हैं और आप उनके सामने दुष्टों की सी लीला करके और उनके मन में ये भावना पैदा करते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा नहीं बनना है मुझे तो भगवान का भजन करना है, मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे भगवान का भजन करना है। ऐसी ऐसी बातें भक्त लोग सोचते रहते हैं, उनके सामने आप जान करके ऐसा बनते हैं। हे प्रभु, मेरी उत्पत्ति तो आप जानते हो, आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी से मैं पैदा हुआ, तो मैं तो महाराज आपका पोता हूं, तो आप तो मेरे पितामह हो, दादा हो। यही दृष्टि प्रत्येक मनुष्य को रखनी चाहिए कि हम भगवान से पैदा हुए, हमारे पिता माता के माता पिता 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 आप, अंत में आप ही ठहरोगे। लोग कहे आपके ये पिता कैसे हैं कि साहब हम इनसे पैदा हुए हैं, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृत प्रभु है प्रलय स्थानम विधानम, मैं धाता माता पितामह, मैं सब कुछ मैं हूं, इन प्राणियों का दादा भी मैं हूं तो बाप भी मैं हूं तो सब मैं हूं, वो सब कुछ मैं हूं। तो ऐसे आपका ऐसा कोई प्राणी है क्या कि जिसके साथ आपका संबंध है ही नहीं? ऐसा एक भी प्राणी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बिना उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो मैं महाराज आपका पौत्र हूं, अतः स्तवाहम पौत्रोस्मि, और मैं आपकी भक्ति में भी लगा रहना चाहता हूं, मेरी रक्षा करो। और महाराज मैं तो एक विशेष काम से आपके पास आया हूं। नारद जी कह रहे हैं राम जी को, एकांत में महल में अकेले बैठे हैं, मुझे अभी अभी ब्रह्मा जी ने भेजा है, और कहो जाकर के राम से याद दिलाओ उनको, आप के लिए ब्रह्मा जी ने संदेश दिया है कि हे राम, आप तो रावण के वध के लिए यहां आए हो, अयोध्या का राज्य लेने के लिए थोड़े ही आए हो, और अब आपके पिता आपका अभिषेक करने की तैयारी कर रहे हैं, और आप और रावण के अवध करने के लिए यदि आप अयोध्या के राजा बन जाओगे तब रावण के साथ युद्ध करना आपके लिए संभव ही नहीं होगा, किस कारण से आप युद्ध कर पाओगे? सीधा तो लंका पर आक्रमण होगा नहीं, यदि राज्याभिषिक्ता यदि राज्य पर बैठ गए रावणो न मरिष्यति, रावण मरेगा नहीं, और आपने हम सबके सामने प्रतिज्ञा की है कि मैं रावण को मारूंगा, तो आपकी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए बोल रहे हैं, जनता के हित के लिए बोल रहे हैं, इसलिए आप सत्य प्रतिज्ञ होने के लिए सर्वप्रथम आप रावण के वध के लिए क्या करना चाहिए ये विचार कीजिए, और आपको अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने के बाद सीता का हरण नहीं होगा, और सीता हरण जैसा पाप किए बिना रावण की मृत्यु नहीं होगी, रावण की मृत्यु के बिना संसार का कष्ट दूर नहीं होगा, और आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं होगी। ये बात याद दिलाने के लिए कि आपको तो पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वहां सब आपके राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है, मीटिंगें हो रही है, मैंने तो आपको सब याद दिला दिया। इतनी बात सुनकर के भगवान बड़े मुस्कुराते हुए कहने लगे, नारद जी मैंने क्या समझ करके अवतार लिया है, क्या मुझे इन छोटी छोटी बातों का भी ज्ञान नहीं है? एक तरफ तो नारद जी तुम कहते हो कि आप सारे संसार में रहने वाले हो, तो क्या मैं दशरथ जी के हृदय में नहीं हूं? क्या मैं अयोध्या वासियों के हृदय में नहीं हूं? सबके हृदय में रह रहा हूं तो सबकी बात जान रहा हूं, पर याद रखो केवल वनवास होने मात्र से रावण नहीं मरेगा, रावण का भी अपना प्रारब्ध है, मैंने सबको अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन दे रखा है, अभी रावण नहीं मरेगा, अभी रावण के मरने में 14 वर्ष बाकी है, चतुर्दश समास तत्र है, 14 वर्ष की आयु जब उसकी पूरी हो जाएगी तभी वो मरेगा। आप लोग ऐसा समझते हो कि वन में जाए और रावण सीता का हरण कर ले और फिर जो रावण को मार दे, नहीं होगा ऐसे, रावण का भी तो अपना भाग्य है, ऐसे कोई किसी को थोड़ा ही मार सकता है, ऐसे मारने से मेरी लीला में दोष आएगा, इसलिए आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। तत्त्व प्रारब्ध संशयात, हर प्राणी का अपना अपना प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध के अनुसार जब आयु क्षीण होगी ना तभी वो मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। आप निश्चिंत रहिए, ब्रह्मा जी को जाकर बोलिए कि मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद है, लेकिन सीता के निमित्त युद्ध होगा, उसमें अभी विलंब भी है, ये दोनों बात जाकर के तुम उनको बोल देना। नारद जी बड़े खुश हो गए। नारद जी खुश होकर के तीन परिक्रमा किए भगवान के। देखो ये तीन परिक्रमा का विधान आता है, भागवत में भी आता है, यहां भी आता है। तीन परिक्रमा का भगवान के यहां कैसे आए? मंदिर में जावे तो कम से कम पांच परिक्रमा तो करें, पांच नहीं सात करें। पांच परिक्रमा तो गुरु मंदिर में होती है, सात परिक्रमा भगवान मंदिर में होती है, और शिव जी के आधी परिक्रमा होती है, गणेश जी के चार परिक्रमा होती है, ऐसे अलग अलग है, ऐसे अलग अलग परिक्रमा का विधान है। लेकिन साक्षात भगवान रहते हो वहां तीन परिक्रमा होती है, तो प्रदक्षिण त्रयम कृत्वा तीन बार प्रणाम किया, और प्रणाम करके भगवान से आज्ञा लेकर के नारद जी महाराज चले गए। देखो पार्वती, ये हमने बड़ी गुप्त नारद जी की और राम जी की बातें सुनाई है, ये बातें हर किसी को पता भी नहीं है। जो इन बातों को सुनेगा पढ़ेगा तो उसको वास्तव में देवताओं के लिए दुर्लभ जो मुक्ति है वो मुक्ति उसको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव जी ने कहा कि इधर तो ये बातें हुई, उधर दशरथ जी महाराज, अब कहो देखो दशरथ जी महाराज है ना, वो एकांत में बैठे हुए अपने वशिष्ठ जी के पास आकर कहने लगे, वशिष्ठ जी महाराज मैं कई दिनों से आपको कुछ बात कहना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, अभी मौका मिला है। मेरे पास जितने लोग आते हैं, मंत्री क्या दूसरे क्या, सब लोग आते हैं और बैठ के एक ही बात छेड़ते हैं कि महाराज राम बड़ा सुयोग्य हो गया है, आप राम को युवराज घोषित कर दीजिए। तो युवराज पद पर राम को बैठाने की सभी बात बोलते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे बड़े बूढ़े हो, चाहे शास्त्रों को जानने वाले और लोग हो, सब बोलते हैं। और मेरे मन में भी यही आता है कि राम बड़ा भी है, राम गुणवान भी है और सब गुणों से संपन्न है, तो राम का यदि युवराज पद पर अभिषेक कर देवे तो आपको कैसा लगता है? आप तो इसका अनुमोदन कर दीजिए महाराज, बड़ा अच्छा समय है। अभी भरत है वो ननिहाल गया हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा समय है। भरतो मातुलम दृष्टुम गतः शत्रुघ्न संयुतः है, शत्रुघ्न जी के साथ भरत यहां है नहीं, इसलिए अपना तो राज्याभिषेक युवराज्याभिषेक कर दीजिए। यौवराज्याभिषेक, मेरे मरने के बाद राम ही राजा होगा, इस बात की घोषणा करवा दीजिए। सब जगह सब घरों में ऊंचे ऊंचे झंडे लगवाइए, अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए। आप अपने अधीनस्थ मंत्रियों को आदेश दे दीजिए, सब प्रकार की तैयारी करें, तोरण दरवाजे बनाए और जगह जगह स्वागत द्वार बनाए, सारी अयोध्या को धुपवा करके राजमार्ग माने सड़क वगैरह सब स्वच्छ साफ बनाई जाए, ऐसे आप सबको बोल दीजिए। इधर वशिष्ठ जी महाराज ने सुमन जी को बुलाया और सुमन जी को बुलाकर कहा, देखो सुमन, महाराज ने आज्ञा दी है कि सारी अयोध्या को बहुत सुंदर बनाया जाए और महाराज चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी राम का युवराज पद पर अभिषेक करूं और कल ही करूं। समझने का कल ही, हाँ क्यों, सुबह से शीघ्र। जो अच्छा काम है, शुभ काम है, वो तो जितना जल्दी करो उतना ही बढ़िया है, सुबह से शीघ्र। ऐसा मौका मिलता नहीं है कि अच्छी बात है, स्वभूते कल ही करना है। तो अब हमको क्या क्या काम करना है कि देखो कल है ना प्रातः काल, अपना जो ये किला है, इस किले के अंदर महल के बीच में जो खुली जगह है, उस खुली जगह के अंदर 16 कन्याएं सिर के ऊपर कलशा रखे हुए, चांदी का कलशा रखे हुए मांगलिक कलश लेकर के उपस्थित रहे, और हाथी रहने चाहिए आगे दरवाजे पर, हाथी अनेक प्रकार के स्वर्ण आदि अलंकारों से विभूषित, ऐरावत कुल के अंदर पैदा हुआ होना चाहिए, और चार उसके दांत होने चाहिए, दो दांत तो यूं बड़े और दो दांत बाहर छोटे निकल रहे, चतुर्दंत हाथी होता है, बहुत शुभ होता है। और स्वर्णिम घड़ों के अंदर सब तीर्थों का जल जो हरदम अपने यहां रहता है वो सब वहां पर सजाया जाए, और नए नए व्याघ्र की वो ये सिंह की जो खाल है उस खाल के आसन सिंहासनों पर बिछाई जाए, श्वेत छत्र होना चाहिए, मोतियों की मणि से विराजित वो छत्र वहां पर सबके वहां लगाना चाहिए, आसन पर लगाना चाहिए, और ये बड़े सुंदर पुष्पों से युक्त मालाएं, बड़े सुंदर वस्त्र, ये सब यहाँ पर आनी चाहिए, जगह जगह मुनियों को ला करके यहाँ पर विराजमान करना चाहिए, नाचने वाले नट हैं, नर्तकियां हैं, उनको यहाँ उपस्थित करो, और जो गाने बजाने में कुशल है वो सबको अपने गाने बजाने से मस्त कर देवे, ऐसी व्यवस्था बनाओ, हाथी घोड़े रथ और पैदल ये चारों तरफ से महल की पूरी रक्षा करने में लगे रहे, जितने हमने अयोध्या के अंदर मंदिर है सब मंदिरों को सजाया जाए, सब मंदिरों की पूजा की जाए, सब देवताओं की आराधना की जाए, और सब लोगों को कह दिया जाए कि कल जो है यहाँ पर राज्याभिषेक होने वाला है, सब अपने अपनी तरफ से यथाशक्ति भेंट लेकर के आए, पास पड़ोस के जितने सामंत हैं और राजा लोग हैं उनको भी बोल दिया जाए। सुमन जी को ऐसा बोल दिया, और जो है वशिष्ठ जी महाराज अपने जो है भगवान राम के महल में गए, राम के महल में अकस्मात गुरुदेव जी का आना हुआ तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरु जी आ रहे रथ पर बैठे हुए, एक पिरोल दो पिरोल तीन पिरोल को पार किए और तो गुरु जी आए, तो सामने गए भगवान, गुरु जी को उन्होंने उतारा, रथ से उतार करके महल में ले गए, महल में ला करके सीता जी ने उनके चरण धोए, और राम जी ने जो है सीता जी ने तो जल दिया, राम जी ने चरण धोए, और फिर उसके बाद उनको ऊंचे आसन पर बैठा करके राम जी ने कहा बड़ा धन्य हो गया महाराज, बड़ा धन्य हो गया, कैसे पधारे गुरुदेव। तो हंसते हुए वशिष्ठ जी महाराज के लिए, वाह राम क्या बात हो रही है, क्या हुआ महाराज, आपके चरणों को, आपके चरणों तक को ब्रह्मा जी कमंडलू में धारण करते हैं, आपके चरणों तक को शिव जी अपनी जटा में धारण करते हैं, वो आप मेरे चरण धो रहे हैं, क्या देखो क्या विचित्र लीला है, ये सब आप दुनिया को उपदेश देने के लिए कर रहे हैं, मेरी विशेषता नहीं है, अभी आप लीला कर रहे हैं, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और ये सीता जी साक्षात आपकी लक्ष्मी है, देवताओं का कार्य करने के लिए और भक्तों के हृदय में भक्ति बढ़ाने के लिए और आने वाले भक्तों के अंदर भी भक्ति बढ़ाने के लिए आप ये सब कुछ लीला कर रहे हैं। हे राम सच्ची बात है ना, आपके पास ऋषि मुनि सब प्रार्थना करने के लिए आए ना, कि रावण के वध के लिए आप आइए, आप रावण के वध के लिए आए हैं, देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं, ये बात मैं सब जानता था लेकिन आज तक मैंने अयोध्या के अंदर ये बात उद्घाटित नहीं की है। ये मैंने इसलिए नहीं किया कि अयोध्या वासियों का जो आप में एक अलौकिक प्रेम है, और उन प्रेम में भी जो दशरथ जी का प्रेम है, कौशल्या जी का प्रेम है, मैं समझता हूं ये प्रेम ही प्रेम रहना चाहिए। इस प्रेम के अंदर कि ये राम है, ये परमात्मा है, ये रावण को मारने के लिए आए, ऐसी बात कहने से तो प्रेम में बाधा पड़ेगी। ऐसा प्रेम नहीं कर पाएंगे जो आज एक अपना बालक समझ के प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम रह नहीं पाएगा। इसलिए नहीं उद्घाटयामि, ये मैं लोगों के बीच में प्रकट नहीं करता हूं। लेकिन रघुनंदन, आप भी माया से खूब करते हो, तो मैं भी आपकी माया के अंदर ही डूबा हुआ आपकी लीलाओं को देखता हूं। देखो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, आज ही कहा है आपको, नहीं तो आप मेरे गुरु हैं, मेरे चरणों में प्रणाम करते हैं, मैं आपको सबके बीच में चरणों में प्रणाम थोड़ी करता हूं। हे राम, देखा जाए तो तुम गुरुओं के गुरु हो, तुम बड़ों से सबसे बड़े हो, लेकिन व्यवहार में जब लीला करते हो तो आप इतना अपने को छिपाते हो, तो हम भी सोचते हैं कि चलो ये छिपा रहे तो अपने को भी छिपाना चाहिए। आप अंतर्यामी हो, आप अपने अधीन रह करके लीला करते हो, अपने लीला को अपने अधीन रखते हुए लीला करते हो। हम तो माया के वशीभूत होकर काम करते हैं, आप माया को अपने में काबू में रख करके काम करते हो, लीला करते हो। और लोगों को कैसे पता चलता है, वैसे हमारे जैसा ही है, साधारण है, राम भी किसी का बेटा ही तो है, हम भी किसी के बेटे, ऐसे राम भी किसी के बेटे। आप इतने साधारण इसलिए बनते हो कि हम इनके साधारण से साधारण लोगों के पास जाकर ऐसा व्यवहार करें कि लोग हमारे व्यवहार को अच्छा माने, तो वो भी वैसा ही व्यवहार करने लग जाए। देखो, भगवान है ना, संसार में अच्छा व्यवहार करने का उपदेश देते हैं। ये नहीं कहते कि मैं राम हूं मेरे को मानो, नहीं, मेरे आचरणों को मानो, मेरे व्यवहार को मानो, मेरे कर्म को मानो। तो उपदेश को मानने के लिए भगवान बोलते हैं, मनुष्य लोकेस्मिन भासी तुम योग माया। महाराज, मैं तो ये पौरोहित्य कर्म कभी का ही छोड़ चुका था, पौरोहित्य कर्म अति निंदा। तुलसीदास जी महाराज के वशिष्ठ जी बोलते हैं कि पौरोहित्य कर्म है ये बहुत निंद्य है, अच्छा नहीं है। क्यों? इसमें क्या है भाई, धन की याचना रहती है, ये काम करो और इतना करो इससे हमको कुछ मिलेगा, ये याचना रहती है, बहुत ये निंद्य कर्म है, निंद्य कर्म, पौरोहित्य कर्म अति मंदा। लेकिन मुझे एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, अरे वशिष्ठ क्या करते हो, इक्ष्वाकु वंश में साक्षात हमारे आराध्य भगवान विष्णु राम रूप से अवतार लेंगे, दशरथ जी के पुत्र बनेंगे, तब तक लिए तुम आयु ले लो, तब तक तुम ये कर्म करते रहो, नहीं तो तुमको राम की सेवा का कैसे मौका मिलेगा। इक्ष्वाकु नाम कुले राम है परमात्मा जनिष्यते, इक्ष्वाकु कुल में परमात्मा राम जन्म लेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी से सुनने पर मैं इस वंश की सेवा करने लग गया, आचार्य बना, तरह तरह के मैंने कर्म करवाए, और वास्तव में आज मेरा मनोरथ सफल भी हो गया। राम, जिस दिन तुम्हारा अवतार हुआ था, दशरथ जी को तो अपने ढंग की खुशी हुई और मुझे अपने ढंग की खुशी हुई। अब सोचा कि अब चले जाएं तो भी कोई बात नहीं, आपके मुखारविंद का दर्शन हो गया, मैं तुम्हारा गुरु हूं ना, तो गुरु को तो गुरु दक्षिणा दी जाती है, आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगने भी आया हूं। ये संसार की माया का प्रभाव मेरे पर कभी भी न पड़े, ये आज तुमको गुरु दक्षिणा में मुझे देना ही पड़ेगा। संसार में आपकी माया का प्रभाव मेरे पर न पड़े। माम यथा मोह ये नैव तथा कुरु रघुद्व, गुरु निष्कृत कामस्त्वम यदि देही एत देव में। यदि आप हमको ये कुछ देना चाहते हो गुरु दक्षिणा में, तो ये दे दीजिए। ये तो मैंने आपको बीच में दूसरी बात कह दी, असल में मुझे तो अभी दशरथ जी महाराज ने भेजा है, और उन्होंने मुझे कहा है कि जाकर तुम राम से बोल देना, कि कल राम का अभिषेक होने वाला है और उस अभिषेक के लिए तुमको जो है आज उपवास करना पड़ेगा, जो जो भी करना पड़े वो सब विधि मैं तुमको बता देता हूँ। तुमको भी उपवास करना पड़ेगा, सीता को भी उपवास करना पड़ेगा, तुमको पलंगों पर नहीं सोना पड़ेगा, चटाई पर सोना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, और जो है तुमको सब प्रकार से जो है आज विधि विधान के अंतर्गत ही अपना समय निकालना पड़ेगा। गच्छामि राजन सन्निध, अब मैं तुमको तो अपनी बात कह दिया हूँ, अब मैं राजा के पास जाता हूँ और तुम कल सुबह यहाँ पर जल्दी स्नान वगैरह करके तैयार हो करके और कायदे से वहां पर महल के वहां पर आ जाना। रथ में बैठ करके रवाना हो गए और इधर राम जी महाराज जो है सब बात सुने, सुन करके लक्ष्मण को बुलाएंगे। लक्ष्मण, हाँ महाराज, गुरु जी कह कर गए कल राज्याभिषेक होगा। देखो लक्ष्मण, एक बात कहता हूं, ये राज्याभिषेक मेरा होगा ना, दिखने में तो मेरा है लेकिन होने में तुम्हारा है। सौमित्रे यौ राज्ये में स्वाभिषेको भविष्यति, निमित्त मात्र में वाहम, कर्ता भोक्ता त्वमेव ही, मैं तो निमित्त मात्र रहूंगा, सब कुछ कर्ता भोक्ता तुम ही रहोगे, क्योंकि तुम मेरे बाहर के प्राण हो। अंदर के प्राण तो ये है ही, बाहर के प्राण तुम हो मेरे। कोई विचार मत करना, हमारे काम में पूरा सहयोग करना। लक्ष्मण, ये काम तुम्हारा है, ये हमारे इस काम में तुम सहयोग करो। वशिष्ठ जी ने जो कहा वैसा किया। इधर वशिष्ठ जी महाराज ने राजा से जाकर सब बात कह दी कि महाराज मैंने उनको सब नियम बता दिए हैं और इस नियम के अनुसार सब चलेंगे। इधर भाई एक आदमी ने बात सुन ली, ये राजघराने में जो बातें हो रही थी ये किसी एक आदमी ने सुन ली। उस आदमी ने सुन करके चुपचाप राजघराने से बाहर जाकर सारी अयोध्या के अंदर कह रहा, कल राम का अभिषेक होगा, कल राम का अभिषेक होगा। कश्चित पुमान जगऊ, उसने जाकर के सबको जो है ये बात सुना दी और वो बात फिर जो है फैलते फैलते सारी अयोध्या में फैल गई। सब लोग अपने अपने घरों को सजाने लगे, बड़ा भारी उत्साह होने लगा। कौशल्यायै राम मात्रे सुमित्रायैव तथैव च, अब कौशल्या जी को भी पता चला, सुमित्रा को भी पता चला, सब बड़े आनंद के साथ ब्राह्मणों को बुला बुला करके खूब दान पुण्य देने लगे। कौशल्या पुत्र वत्सला, अपने पुत्र की बात सुनकर के कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई। और कौशल्या जी की इष्ट देवी थी लक्ष्मी जी, वो लक्ष्मी जी के मंदिर में गई और वो लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर जो है सब प्रकार से पूजन किया कि हे लक्ष्मी जी, ऐसी कृपा करना जैसी मैं आज ये कान में बात सुन रही हूं, ऐसा ही मेरे आंखों से मैं यहाँ कल व्यवहार देखूं। हे लक्ष्मी जी, आप ऐसा ही करना। तो मन में आएगा कि भाई ऐसी लक्ष्मी जी क्यों बोल, ऐसे कौशल्या जी क्यों बोल रही है लक्ष्मी जी से, कि दशरथ जी सत्यवादी तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, जो प्रतिज्ञा से बात कहेंगे उसको पूरा करेंगे, परंतु ये परंतु की बात है ना, यहां से कथा बदलती है। परंतु दशरथ जी के वशीभूत भी है और केकई जाने क्या का क्या कर दे, इसका कुछ भरोसा नहीं है। केकई वशगह किंतु, ये किंतु लगाया ना कि ये केकई के वश में रहने वाले और न जाने ये क्या कर बैठेंगे केकई के कहने से, इस बात का भरोसा नहीं है। तो ये केकई का पता नहीं है, ऐसा विचार करके कौशल्या जी दुर्गा के मंदिर में जाकर के बैठ गई। हे दुर्गा माता, आप तो सर्वशक्तिमती हो, आप ये बात हमारी संभाल लो, दुर्गा माता से प्रार्थना की। इधर ये हुआ, उधर देवताओं की मीटिंग चल रही है। देवता कह रहे, देखो ये सारी अयोध्या कैसी सजाई गई है, दशरथ जी ने सब लोगों को बोल दिया है, इस अयोध्या के अंदर सब राम के भक्त हैं, और यदि राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो रावण तो नहीं मरेगा। अब इसमें कौन है अपने में से कि जो इसमें कोई बाधा पहुंचाए, ये सब वाणी का खेल है। दशरथ जी ने भी वाणी से ही तो कहा है कि राम जी का अभिषेक कल होगा, वशिष्ठ जी ने वाणी से ही तो अनुमोदन किया है। तो ये वाणी ही बदल दी जाए तो कितना अच्छा रहे। तो वाणी को बदलने की ताकत तो अपने में से किसी को नहीं, एक सरस्वती को है। सरस्वती को बुलाया, देवताओं ने सरस्वती को बुलाया और सरस्वती को बुला करके देवताओं ने कहा कि देखो सरस्वती जी, विपत्ति हमारी विलो की बड़ी विपत्ति तो आज सब पर आएगी, अयोध्या वालों पर भी आएगी। राम जी का अभिषेक नहीं होगा तो अयोध्या पर विपत्ति आएगी, जंगल में जाएंगे तो राम जी पर विपत्ति आएगी, और नहीं जाएंगे तो हमारे पर ज्यादा विपत्ति आएगी। तो विपत्ति हमारी विलो की बड़ी, राम जी के अभिषेक हो जाने पर हमारे पर जो बड़ी विपत्ति आएगी उस विपत्ति पर विचार करते हुए तुमको राम के अभिषेक में बाधा डालनी चाहिए। सरस्वती कहने लगेगी कैसे डालूं, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में तो मेरा बस ही नहीं चल सकता। क्यों? अयोध्या नगरी सब भगवान की भक्ति, ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो राम को न चाहता हो। कोई आप ऐसा मुझे प्राणी बताओ। देवताओं ने कहा यही समस्या है, जहां राम का प्रेम रहता है वहां पर ये माया वगैरह चलती नहीं। देखो लोग कहते हैं ना, उसने मंत्र कर दिया और उसने टोटका कर दिया और उसने ये कर दिया, उसने हमारे पर कोई मूड चला दी, वो चला दी, सब फालतू बात है। इन बातों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। कब हमारे अंदर यदि भगवान की भक्ति रहती है तब, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रहती है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो देवता लोग नहीं कर सके कुछ भी, दशरथ जी की बुद्धि को नहीं बदल सकते, कौशल्या जी की बुद्धि नहीं बदल सकते। उन सब ने विचार करते करते देखा कि इस अयोध्या के अंदर एक ऐसी स्त्री है कि जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं है, एकमात्र वही है बस, उसका नाम है मंथरा। मंथरा के हृदय में राम के प्रति कोई प्रेम नहीं है। मंथराम प्रविशस्वादौ, सबसे पहले तुम मंथरा के हृदय में प्रवेश करो, बुद्धि में प्रवेश करो और उससे बातें कराते 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 फिर जो है तुम केके के दिमाग में प्रवेश करना, फिर सब काम बन जाएगा। एक को, एक की बुद्धि को फेर दो। प्रारंभ में तुम केके की बुद्धि नहीं फेर सकते, किसी की बुद्धि नहीं बदल सकते, और जब मंथरा मिल जाएगी और मंथरा के साथ केके मिल जाएगी तो हमारा सब काम बन जाएगा। ततो विघ्ने समुत्पन्ने पुनरेव दिवं विशुभे, और इन सब की बुद्धि को बदला बदलू करके अयोध्या में ठहरना नहीं। क्यों? अयोध्या के अंदर जब सबके मन में जलन पैदा होगी, दुख पैदा होगा ना राम जी के वियोग का, तो वो राम जी वो समझेंगे कि अरे ये सब सरस्वती ने करवाया है तो ठीक नहीं रहेगा, तुम तत्काल बुद्धि बदल करके सीधा स्वर्ग में आ जाना। तथेति उक्त्वा, अब जो है इतना कह दिया कह करके और वो वहां से रवाना।